जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार निज दुख बिरना बिरना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का यही स्वभाव है। भगवान कृष्ण के प्रति जब किसी का प्रेम होता है और बहुत गाढ़ प्रेम होता है, उस प्रेम का यह स्वभाव है कि जिसमें वो प्रेम रहता है उस वह व्यक्ति अपने दुख या अपने बिघ्न आदि का विचार नहीं करता है, कोई सोचता भी नहीं है। मधुरेन्द्रपुरी के मन में इतना उत्साह था कि भगवान को चंदन लगाना है, भगवान ने कहा है कि चंदन लेकर के चल है, तो कभी सोचे नहीं कि इतना कष्ट होगा, इतना लंबा रास्ता है, बीच बीच में कोई विघ्न में आएगा, कुछ भी विचार नहीं कि चल दिए। निज दुख विघ्ना दीर न करे विचार। यही तार गाढ़ प्रेम लुके देखाई थे गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन यानी थे। मधुरेन्द्रपुरी जी के इसी प्रेम को दुनिया में दिखाने के लिए श्री भगवान ने उनको चंदन लाने के लिए कहा। वास्तव में भगवान पर ताप क्या लगेगा, तो सब तरह से प्रकृति के पदार्थों से परे है, परंतु वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके भक्त का यह प्रेम लोगों को पता लगे तो वे भी इसी तरह से मुझसे प्रेम करेंगे। मधुरेन्द्रपुरी के प्रेम को दिखाना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने सपना में मधुरेन्द्रपुरी को आज्ञा दिया चंदन आनी के चंदन लाने के लिए। केवल इसमें यही उद्देश्य था भगवान का कि मधुरेन्द्रपुरी का जो हमारे प्रति प्रेम है वो पता चले भक्तों को, विशेष करके संसार में लोगों को। यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई थे गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनी थे। बहु परिश्रम चंदन रेणु आनिल आनंद बाढ़िल मने दुख न गणिल। बहुत परिश्रम करके एक मन चंदन ये लाए रेमुना और परीक्षा करिते गोपाल कैला आज्ञा दान परीक्षा करिया से हैला दयावान। इनकी परीक्षा लेने के लिए गोपाल ने सपना दिया गोवर्धन ने गोविंद कुंड पर कि हमको बहुत गर्मी है और मैं यहाँ पड़ा हूँ, हमारे लिए मंदिर चाहिए। और इसके बाद सपना दिए कि हमको बहुत ताप है, हमको शीतलता के लिए चंदन चाहिए। ये परीक्षा थी भगवान की कि हमारे लिए ये चंदन ढोएंगे लाएंगे, तो उसमें तो सफल हुए मधुरेन्द्रपुरी ठाकुर। और अंत में अपने भक्त का परिश्रम जान करके रिमुना में ही भगवान ने फिर सपना दिया कि आप यह चंदन यहाँ दे दीजिए, गोपीनाथ जी को चंदन लगाया जाएगा तो मेरे ही अंग पर लगेगा, क्योंकि गोपीनाथ जी में और हम में कोई भेद नहीं। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझी थे वो आमा सवार नहीं अधिकार। इस प्रकार का प्रेम है भगवान का अपने भक्त के प्रति और भक्त का अपने भगवान के प्रति, इस तरह का प्रेम। लेकिन इन सब बातों को तो हमें समझने का भी अधिकार नहीं है। बुझीते हो आमा सदर नहीं अधिकार, ऐसा प्रेम हम लोग करेंगे क्या? मधुरेन्द्रपुरी के प्रेम को और भगवान कृष्ण के प्रेम को उनके प्रति, इसको भी समझना भी हम लोगों के लिए कठिन है। करना तो बहुत दूर की बात है। कौन व्यक्ति है जो 1000 कोस जा करके और चंदन लावे पैदल? कुछ भी नहीं, किसी से कह दिया जाए कि पैसा लाओ और पैदल जाओ, इतना कोई पैदल नहीं जा पाएगा। यदि वृंदावन से जाना होता तो मांगेगा हमें फ्लाइट का टिकट चाहिए भुवनेश्वर का, और एयरपोर्ट जाऊंगा दिल्ली वृंदावन से, उसके बाद भुवनेश्वर जाऊंगा और वहां से तब चाहे त्रिवेंद्रम या बंगलोर जाल में कोई पैदल जा सकता है, लेकिन माधवेंद्रपुरी का प्रेम ऐसा था, इधर से गए और जा करके चंदन इकट्ठा किए जगन्नाथपुरी में और वहां से फिर पैदल चले। तो यमुना आते आते भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनमें दया उत्पन्न हो गई, उन्होंने सोचा यहीं तक बस हो गई सेवा। तो उन्होंने सपना दिया कि गोपीनाथ में और हम में कोई अंतर नहीं है, तो आप गोपीनाथ जी को चंदन दे दीजिए, मैं शीतल हो जाऊंगा। इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त और भगवान के इस प्रेम को समझने की भी शक्ति हम लोगों में नहीं है, अद्भुत प्रेम है। इतना बल नहीं पड़े प्रभु तार कृत श्लोक से यह कह करके चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक पढ़ने लगे, जो श्लोक माधवेंद्रपुरी का रचा हुआ है। ध्यान रखे कि ये कथा गोपीनाथ मंदिर में चल रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में रेमना पड़ा गोपीनाथ मंदिर, तो वहां रात को रुक गए। क्यों? कि शाम को रुकेंगे तो फिर प्रसाद मिलेगा, और उसी संदर्भ में वे माधवेंद्रपुरी की कथा लगे कहने। माधवेंद्रपुरी की कथा कहते कहते चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक स्मरण आया, जो माधवेंद्रपुरी ठाकुर का बनाया हुआ श्लोक, उसको पढ़ने लगे। ये तो बलि पढ़े प्रभु तार कृत श्लोक, से श्लोक चंद्र जगत करा छे आलोक। यह श्लोक एक चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा उगता है पूर्णिमा को तो अंधकार नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान के भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में जो भी अंधकार संसार में है उस अंधकार का नाश करता है यह श्लोक। वास्तव में शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति क्या है, इस श्लोक से पता चलता है। चंद्रमा जैसे अंधकार का नाश कर देता है, इस तरह से यह श्लोक सब प्रकार के संशय अज्ञान आदि का नाश करता है। इसीलिए इसकी उपमा चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा से की है। जे श्लोक चंद्र जगत करया छे आलोक, जैसे चंदन मलयगिरी का हो और उसको जब रगड़ा जाता है तब तो उसमें से सुगास निकलती है, इसी तरह से ये श्लोक है, इसको विचार किया जाए तो इसमें बहुत सुंदर सुगंध निकलती है, इसका अर्थ समझ में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चंदन को घिसने से उसकी सुगंध प्रकट होती है, वैसे ही इस श्लोक का मनन करने पर, श्रवण करने पर तब पता चलता है कि इसमें कितना माधुर्य है। ऐसा श्लोक घसीते घसीते जैसे मलय अजसार गंध बाढ़े तैसे इस श्लोक के विचार। इसी तरह से भागवत का श्लोक है, जब श्लोकों पर विचार होता है तब आनंद प्राप्त होता है, श्लोक पर विचार होना चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, मलयगिरी के चंदन को घसीटे घसीटे घिसते घिसते तब ससार प्रकट होता है, इसकी सुगंध शीतलता। तो इस प्रकार इस श्लोक पर जितना ही विचार किया जाता है उतना ही मन आनंद से भर जाता है। रत्नगण मध्य जैसे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्य तैसे ही श्लोक गणि, जैसे समस्त मणियों में रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह से जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों में यह श्लोक मुख्य है। कौस्तुभ मणि का नाम सुने हैं ना, वो मणि श्री भगवान पहनते हैं, कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से उनको मिला था, लक्ष्मी जी से विवाह हुआ भगवान का और समुद्र में अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद, लक्ष्मी जी का विवाह करने के बाद भगवान को दहेज में कौस्तुभ मणि दिया है। उसको भगवान धारण करते हैं। तो सभी रत्नों में जैसे श्रेष्ठ है कौस्तुभ, उसी तरह सभी श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक है बाघेन्द्रपुरी के द्वारा बनाया, वो श्लोक आएगा। इस श्लोक करिया छेन राधा ठाकुरानी, इस श्लोक को कौन बोला है? तो श्रीमती राधा रानी ने बोला है, माधवेन्द्रपुरी ने इसको रचा, लेकिन वास्तव में ये श्लोक जो है राधा रानी के मुख से निकला है, उसी मूड में लिखे हैं माधवेन्द्रपुरी। इस श्लोक करिया छेन राधा ठाकुरानी, तार कृपा सूर्य छे माधवेन्द्र बाणी। वास्तव में यह श्लोक राधा रानी का भाव लेता है और राधा रानी की कृपा से श्रीपद माधवेन्द्र पुरी जी के वाणी पर यह श्लोक आया है। युवा गौर चल रही है करे आस्वादन, यहाँ आस्वादित हार नहीं। इसका अर्थ है राधा रानी जानती है और माधवेन्द्रपुरी ठाकुर जानते हैं, और माधवेन्द्रपुरी चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी तीन आदमी जानते हैं इसका वास्तविक अर्थ, इसका आस्वादन कर सकते हैं, चौथा कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चौथा कोई नहीं है। तीन किसको कह रहे हैं? तीन मतलब राधा रानी, भगवान कृष्ण और माधवेन्द्रपुरी। अपने को नहीं रख रहे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेन्द्रपुरी ठाकुर तीन जानते हैं। यह आस्वादित आग नाही चौथ जान, चौथा कोई नहीं, यह तीन ही जानते हैं। इस श्लोक में इतना रस है कि इसका आस्वादन तीन ही व्यक्ति करते। सबसे पहले राधा रानी ने किया, कृष्ण के विरह में बोल रही राधा रानी ने उसको बोला, राधा रानी की कृपा से माधवेन्द्रपुरी ठाकुर इसका आस्वादन किए, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते हैं इसका, तो स्वयं श्री कृष्ण है। तीन के अलावा चौथा कोई इसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानता। कौन है वह श्लोक? शेष काले श्लोक को पढ़ते पढ़ते सिद्धि प्राप्ति है पूरी श्लोक के सहित। जब माधवेन्द्रपुरी अपने जीवन के अंतिम दशा में थे, तो श्री कृष्ण के विरह में यही श्लोक पढ़ते पढ़ते प्राण छोड़े थे, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। श्लोक पढ़ते पढ़ते राधा रानी के मुख में पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ते पढ़ते ही प्राण का उत्क्रमण किए, शरीर छोड़े। वो श्लोक इस प्रकार से, आई दीन दयादनाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्यसे हृदयम् त्वद् अवलोक कातरम् द्वैत भ्रम्यति किं करोम्यहम्। राधारा ने कहती उस भाव, अई दीन दयाद्र हे दीन पर दया करने वाले, मैं बहुत दीन हूँ, आपके विरह से बहुत दुखी हूँ। हे मथुरा नाथ, आप ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए, या मथुरा ब्रजमंडल को भी कहते हैं कि हे मथुरा के अधिपति, ब्रज के राजा, कदा व लोक्य से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कब हमारी दशा देखेंगे, मैं कब आपको देखूंगी। राधा रानी कहती कदा अवलोक्य से, कब आप हमको देखेंगे। हृदय तो दवलोक कातर, मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए कातर है, आपको देखे बिना तड़प रहा है हृदय। हे दैत हे प्रियतम ध्यान्यति किम करो, हमारा चित्त भ्रमित हो रहा है, भ्रमित होकर छटपटा रहा है आपको देखने के लिए, तो आप मेरी दशा को कब देखेंगे, मैं कब आपका दर्शन पाऊंगी, किम करोमी अहम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं है, इस श्लोक का भाव है। मैं क्या करूं, किम करोमी अहम, अहम मतलब मैं क्या करूं, कौन काम करूं कि आपका दर्शन मुझे मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको देखे बिना मेरा हृदय तड़प रहा है, छटपटा रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन उपाय बताएगा, कुछ बुद्धि में समझ नहीं आ रहा है, इधर छटपटा छटपटा रहे हैं। मधुवेंद्र पुरी ठाकुर अंतिम दिन यही श्लोक पढ़ रहे थे और वास्तव में वे बड़े बड़े छटपटा रहे थे कृष्ण के विरह में, ये श्री कृष्ण आपको देखे बिना मेरा हृदय छटपटा रहा है, अब कब हमारे पास आएंगे, कब मैं आपका दर्शन करूंगा, इस तरह से यही श्लोक पढ़ते पढ़ते और शरीर छोड़। इस श्लोक के विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बात करते हैं, बिल्कुल सकते हैं, समस्त श्लोकों में यह सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, जैसे समस्त रत्नों में मणियों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ। आई दीन दया ग्रहे मथुरा नाथ कदावलोक्य लोक्य से हृदय तद अवलोक कातरम दैत ध्यान्यति किम करो मैं हम, उसको अच्छा से गाया जाता है, हम तो केवल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा से इसको गाया जाता है। इसमें राधा रानी के हृदय की प्रार्थना श्याम सुंदर के प्रति प्रकट है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए ब्रज छोड़ करके, सारा ब्रज दुखी हो गया। माँ जशोदा नंद बाबा रोते रहते थे, श्री गोपी जन जिनके लिए श्री कृष्ण को देखने में पलक गिरना भी असाध्य हो जाता था, जहां पलक गिरती है, श्री कृष्ण जब वन से गोचारण करके आते थे, उनको श्री गोपी जन अपने अपने घरों से अपने अपनी गलियों से देखती थी, तो उस समय आंख पर पलक बनाने वाले विधाता को गाली देती थी, क्यों आंख पर पलक बनाया, पलक से व्यवधान हो रहा था देखने में, जो पलकों को भी व्यवधान समझती थी, कृष्ण को देखे बिना एक सेकंड भी दिन के लिए करोड़ों युग के समान होता था, वही श्री कृष्ण उनके नेत्रों से दूर चले गए मथुरा। बाद में भगवान ने उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजा कि मैं आऊंगा, चिंता मत करो, यही दो अध्याय में कथा है जिसको भ्रमर गीत कहते हैं, यही कथा खडीना में होने वाली है भ्रमर गीत। तो वास्तव में यह श्लोक समस्त श्लोकों में राजा है, जैसे मणियों में कौस्तुभ मणि। त्रिमुन माद हैला उठी इति उति धाय हुंकार करे हासे कांदे नाचे गाय। माधवेन्द्र पुरी इस श्लोक को जब चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे, इसका अर्थ कर रहे थे, त्रिमुन माद हो गया, कथा कह रहे थे लेकिन उठ करके इधर उधर दौड़ने लगे, ये दशा चैतन्य महाप्रभु की हो गई। राधा रानी स्वयं है ही, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु इधर उधर दौड़ने लगे और कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। आई दिन बोले बार बार, श्लोक पूरा नहीं बोल पाते चैतन्य महाप्रभु, आई दीन दयाद्र, अपने प्रेमी भक्तों पर दया करके जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, अई दिन चैतन्य में आपने केवल इतना ही बोला था अई दिन ये श्लोक के शुरू में है। अई दिन बले बार बार कंठे निसरे बाणी नित्य रस्य धारी, कंठ से पूरा श्लोक नहीं आ पाता था, भगवान का नाम भी नहीं आ पाता था, कंठ अवरुद्ध हो गया है। नित्य असुधार कंप शेद पुलका स्तंभ पैवर निर्वेद विषाद जैठ गर्भ हर्ष। इस प्रकार इस श्लोक के स्मरण करते ही चैतन्य महाप्रभु की दशा हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, नेत्रे अश्रुधार आंखों में आंसू की धारा, और कंठ से वाणी नहीं निकल रही थी, कंप शरीर कांपने लगा, ये प्रेम का एक विकार है। कंप शेद शरीर में पसीना भर गया, विरह में ऐसा होता है दुख में। पुलक का शेद पुलक शरीर में छा गए, रोए सब खड़े हो गए और आंखों में आंसू है, स्तंभ। कभी कभी चैतन्य महापुरु को स्तंभ भी स्तंभ कहते हैं खम्भा पर, चुपचाप हाथ नहीं हिलता था, आंख नहीं चुपती थी, इधर उधर बाई नहीं, चुपचाप खड़े। वैवर्ण कहते हैं वर्ण जब फीका हो जाए, चेहरा का रंग बिल्कुल उड़ जाए चिंता विषाद में, इसको वैवर्ण कहते हैं। निर्वेद और निर्वेद होना, निर्वेद का अर्थ है संसारिक सब प्रकार के सुख से मुख मोड़ लेना, वैराग्य को कर निर्वेद। कभी कभी राधा रानी में इस तरह का निर्वेद होता है, अपने सखियों से कहती है, सखी यदि मैं पहले जानती कि श्याम सुंदर से प्रेम करने से इतना दुख होता है तो मैं सारे गांव में ब्रज में ढिढोरा पीटती हूँ कोई प्रेम मत करो, अगर पता होता है हमें इतना दुख होता है, इसको निर्वेद करो। और कभी कभी मैं कहती हूँ मैं कोई भी काला चीज नहीं देखना चाहती, छलिया काला इस तरह से झूठ बोला, चरण में गिर कर कहता था कि तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा और चला गया बिना पूछे मत, ऐसे काले लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राधा रानी कहते हैं कृष्ण बाहर से भी काला है, इसका हृदय भी काला है, इस तरह से बोलते हैं। कभी कभी कहते हैं ये सांवला आकाश है, इसको उजला दितान तान जो कि आकाश न दिखाई दे, बादल न दिखाई दे, सांवला कुछ दिखना ही नहीं चाहते। और कोयल पक्षी गाता था तो सारे कोयलों को पकड़ो और इनको चूना में रंग दो, यू सब उजला हो जाए, मैं सांवला देखना नहीं चाहता। भक्तों ने गीत में सब चीज गाया है, तमाल के जो वृक्ष हैं सबको सब पर चूना पोत दो, सबको उजला कर दो, और कृष्ण शब्द में सुनना नहीं चाहता, भूल करके भी कोई कृष्ण ना बोले, इतना चीड़ हो जाता था कृष्ण, इसको निर्वेद कहते हैं, कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखना है। पर ये दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए होता था, फिर तो हा श्याम सुंदर हा ये तो हम यही चलता है, तो निर्वेद होता चैतन्य विषाद, विषाद का अर्थ दुख, और जाड्य जड़ता गर्व, और कभी कभी कृष्ण से प्रेम करने का गर्व, मैं कितनी सौभाग्यवती कृष्ण मेरे चरण पर गिरते थे, मेरे बस में है, इसको गर्व कहते हैं। कभी निर्वेद और कभी गर्व दोनों बिल्कुल विपरीत है, प्रेम करने के कारण भोग दुख हो रहा है, निर्वेद नहीं करना चाहिए, और जब गर्व उदित होता है तो राधा रानी सोचती है मैं लक्ष्मी जी से भी अधिक सौभाग्यवती श्याम सुंदर हमें मनाते हैं चरण गिर कर गर्व कर। एक ही श्लोक में सारी बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन कर रहे हैं। हर्ष हर्ष दैन दीनता, मैं श्याम सुंदर की दासी हूँ, भले वे अपनी प्रिया कहते हैं लेकिन मैं तो उनकी दासी हूँ और मैं योग्य नहीं हूँ किसी के, इसको दैन कहते हैं। इस श्लोक का उभार लिया प्रेमेर कपाट गोपीनाथ सेवक के थे प्रभु प्रेरणा। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को उभार उभार कर चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे। गोपीनाथ का सेवक जो था पुजारी चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम विकार को देख करके विस्मित हो गया, अद्भुत प्रेम है भगवान पर। लोकेर संघट देखी प्रभु बाह्य हरल ठाकुर भोग करे आरती दर्शी। बहुत लोग जुट गए थे बाह्य लोग, वे लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को नहीं समझ रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम का संवरण किया। गोपीनाथ की कथा कह रहे थे, माधवनपुरी की कथा पूरी करके और इस तरह से प्रेम विकार उत्पन्न हुआ श्लोक का आस्वादन करके, तो बहुत लोग जुट गए। लोके संघट, संघट माने भीड़, लोगों की भीड़ देख करके भगवान ने बाह्य किया, बाह्य हो गए सन्यासी के रूप में दर्शन करना है करना है, अपने भाव का संवरण किए। उस समय ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद आरती के घंटे बजने लगे, आरती होने लगे। ठाकुर स्वयं कराइया पुजारी है बाहिर प्रभु आगे आनी दिल प्रसाद बार छेर। ठाकुर को स्वयं करा करके पुजारी बाहर आया शाम के समय, तो भगवान के सामने चैतन्य महाप्रभु के सामने बारह बर्तन रख लिए। बहुत समाज था न, बारह पात्र में भोग लगता था, उसमें पुजारी बारह पात्र चैतन्य महाप्रभु के सामने रखा। शीर देखे महाप्रभु आनंद बाहिल भक्तगण खवाए थे पंच शीर लगल। खीर को देख करके चैतन्य महाप्रभु का आनंद बढ़ गया कि भगवान गोपीनाथ ने इसको खाया है, तो भक्तों को खिलाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु पांच बर्तन लिए पांच मटका। सात क्षीर पुजारी के बाहुड़ी दिल और सात बर्तन लौटा दिए आप किसको देना। पंच क्षीर पंच जने बटिया खाई लो, पंच क्षीर पांच बर्तन जो थे पांच व्यक्ति लिए, पांच को दिया चैतन्य महाप्रभु ने और वे लोग बांटने लगे। गोपीनाथ रूपे यदि कल्या छे भोजन भक्ति देखाई थे कैला प्रसाद भक्सन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोपीनाथ हैं, गोपाल हैं, तो वे गोपीनाथ के रूप में तो खाए थे इस खीर को और इसके बाद स्वयं खाए, तो सिर्फ गोपीनाथ के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु खाए थे तो फिर भक्त भाव में खाए भगवान का प्रसाद खा रहे। एक ही प्रभु दो तरह की लीला कर रहे हैं, गोपीनाथ के रूप में भी हैं और इधर भक्त के रूप में भी हैं। नाम संकीर्तन से रात्रि गवाहिला मंगल आरती देखी प्रभाते चलेगा। तो उस रात वहीं रह गए थे, पहले ही बताया गया था कि खीर के लोभ से चैतन्य महाप्रभु रात को रुके, तो खीर मिला और रात को वहीं रुके और भोर में मंगल आरती देख करके तब चले जगन्नाथपुरी की तरफ। गोपाल गोपीनाथ पूरी गोसाई रघुण भक्त संगे सिंह के प्रभु कैला आश्रम। इस प्रकार गोपाल जी और गोपीनाथ जी और माधवेन्द्रपुरी ठाकुर, इनके गुणों का चैतन्य महाप्रभु स्मरण किए, वहां अपने श्रीमुख से कथा कहे गोपीनाथ जी चीफ जो गोपीनाथ की कथा और गोपाल जी की कथा, स्वयं आस्वादन किए कथा श्रीमुख से कहे भक्तों को सुनाए आस्वादन किए और अंत में श्री श्लोक का आयु दीन दया थे इस श्लोक का साधन किया। यही तो आख्यान कहिला दोहार महिमा प्रभु भक्तवात्सल्य आले भक्त प्रेम सिंहा। इसमें इस प्रसंग में दो बात कही गई, एक तो भगवान कितना भक्त वत्सल है इस बात को व्यक्त किया गया है, और भक्त के प्रेम की सीमा दिखाई गई कि भक्त कितना भगवान से प्रेम करता है। महेंद्रपुरी इतना परिश्रम किए चंदन लाने में और गोपाल जी को प्रकट किए, तो भक्त इतना प्रेम करता है भगवान के लिए, वो कोई भी चीज स्वीकार करता है। ये नहीं सोचता कि ये जाल ना करें, ये मंदिर ना बनाएं और ये ना करें, इसमें बड़ा कष्ट है, ये उन्होंने विचार नहीं किया। भगवान के सुख के लिए मंदिर बनवाया वहां अन्योर में, और भगवान के सुख के लिए चंदन लाने गए। भक्त से भगवान कितना प्रेम करते हैं कि सपना में बात करते हैं, भक्त के लिए खीर चुराए, भगवान भक्त से इतने प्रेम करते हैं कि अपने ही मंदिर में उनको ही भोग लगा है फिर भी चुराए, चोरी किया और चोरी करके फिर पुजारी को सपना दिए कि माधवेंद्रपुरी आए हैं, उनको ले जाकर के दे दो बिना खाए कहीं बाजार में सोए। तो पुजारी गया और जगा करके माधवेंद्रपुरी को दिया खेल खाने। तो ये है भक्तवात्सल्य, भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये बात माधवेंद्रपुरी के चरित्र से प्रकट हुई है। तो दो की महिमा यहाँ व्यक्त हुई है, भक्त का कृष्ण प्रेम और कृष्ण का भक्त प्रेम। श्रद्धा युक्त हैया यह सुने जय जान, श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धाम। श्रद्धा करके विश्वास करके एकाग्र चित्र जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता है तो श्री कृष्ण के चरणों में उसे प्रेम धन प्राप्त होता है केवल सुनने से। तो श्रद्धा और एकाग्र चित्त का अर्थ है कि सावधान मन से सुने, सुनना चाहिए एक एक शब्द को। कभी कभी कथा सुनने के लिए लोग आते हैं तो आराम से बैठ करके सोते हैं, तो श्रवण नहीं करते हैं, सहन करते है ना, वो तो उसका तो छूटते जाते हैं, आदमी परपॉइंट को पकड़ नहीं पाता। अंत में कृष्ण दास कृपया प्रसन्न कर रहे हैं कि श्रद्धा युक्त हैया इहा सुने जय जन, श्री कृष्ण चलने से ही पाए प्रेम धन। श्री रूप रघुनाथ पदे जरयास, चैतन्य चैतन्य कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में जिनकी आशा है, विश्वास है, प्रेम है, ऐसे कृष्णदास चैतन्य चैतन्य कहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहे थे और रूप गोस्वामी के साथ। कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। हमेशा हरेक अध्याय के अंत में लिखे इस प्रकार से ये अध्याय पूरा हुआ। अब दूसरे अध्याय की कथन थोड़ा सा पढ़ते हैं। पदभ्याम चलनीय प्रतिमा स्वरूप ब्रह्मांड देव ही, ब्रह्मांड देव ही सत्ता गम्य सत्ता 100 डेज। अच्छा सत्ता जो प्रभु वृंदावन से प्रतिमा स्वरूप थे, साक्षी गोपाल जी की कथा प्रारंभ की जाएगी। दूसरी बात, वृंदावन से पैदल चल करके आए उड़ीसा, साक्षी के पास उनकी वंदना करें। पदभ्यान चलन यह जो पैदल ही चल करके आए, जो प्रतिमा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है जिनका नाम गोपाल था और उड़ीसा में आए साक्षी देने के कारण इनका नाम साक्षी गोपाल है, तो गोपाल नाम था। तो जो प्रतिमा स्वरूप थे और वृंदावन से चल करके आए, जो वास्तव में ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण, देशम जजो विप्रकृते बुद्धेहम तम साक्षी गोपाल महम न तोष्मि। एक ब्राह्मण के लिए प्रेम के वश में होकर के गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए कि वृंदावन से चल करके आए, ऐसे भगवान साक्षी गोपाल की मैं वंदना करता हूं। साक्षी पद से अक्षी, अक्ष का थे आंख, और अक्षी माने आंख वाला, जिसने डायरेक्ट कोई चीज देखा है और कहता है तो उसको साक्षी कहते हैं। गवाही देने के लिए भगवान आए वृंदावन से और पैदल चल करके आए, मूर्ति के रूप में है भगवान और चल करके आए। जो लोग श्री विग्रह में विश्वास नहीं करते हैं बहुत गंदे हृदय के लोग हैं, कि कहते हैं भगवान मूर्ति में नहीं है, ये तो पत्थर है, ये है। उन ऐसे मूर्खों को ये अध्याय पढ़ना चाहिए, भगवान किस तरह वृंदावन से आए। पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी वंदना कर रहे हैं साक्षी गोपाल जी, और जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में गए जानते हैं कि रमुना के बाद फिर साक्षी गोपाल आता है, साक्षी गोपाल के बाद तब फिर जगन्नाथ मंदिर आता है, ये क्रम है। गोपीनाथ जी की कथा कहने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये सब पहुंचे साक्षी गोपाल, तो साक्षी गोपाल मंदिर में किस तरह से गोपाल जी वृंदावन से आए और गवाही दिए, ये कथा नित्यानंद प्रभु कहेंगे। गोपीनाथ जी की कथा चैतन्य महाप्रभु ने कहा और साक्षी गोपाल जी की कथा श्री नित्यानंद प्रभु कहेंगे। ये पूरा अध्याय बहुत ही सुंदर अमृतमय प्रसंग है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, चलिते चलिते आइला जागपुर ग्राम, बराहा ठाकुर देखी करिला प्रणाम। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, मुकुंद, चारों चलते चलते आए। कहाँ आए, चलित गदाधर आए, मुकुंद चलते चलते याजपुर ग्राम आए, ये आज भी याजपुर है, और वहां भगवान बाराह देव की मूर्ति है। तो बाराह देव को देख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। नृत्य गीत कैला प्रेम बहुत समान, याजपुर से रात्रि करी ला जापन, तो वह रात्रि बिता दिए याजपुर, बहुत दूरी है रमुना से साक्षी गोपाल जी की। इसके बाद भगवान जाजपुर के बाद कटक आए, कटक आईला साक्षी गोपाल देखी थे, गोपाल सौंदर्य देखी आईला आनंदित। उस समय साक्षी गोपाल भगवान कटक में थे, कटक पुरी से 80 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर कटक, 60 किलोमीटर नहीं 80 किलोमीटर। इस समय साक्षी गोपाल गांव में भगवान रहते हैं, गांव का ही नाम साक्षी गोपाल है, रेलवे स्टेशन भी है वहां, रेलवे स्टेशन का नाम भी साक्षी गोपाल। परंतु इसके पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वे राजा ने भवन बनवाया था मंदिर, पुरी के राजा, उड़ीसा के राजा, तो कटक ही राजधानी थी, राजा वहीं रहते थे। तो कटक में साक्षी गोपाल थे, वहाँ भगवान देखने गए चैतन्य महाप्रभु, देख करके विस्मित हो गए मूर्ति का सौंदर्य। कटक आईला साक्षी गोपाल देखी थे, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदित, गोपाल का सौंदर्य देख सुंदरता देख करके चैतन्य महाप्रभु आनंद में विभोर हो गए। ये बहुत बड़े विग्रह हैं और इनका चरण छूने का भी अवसर मिलता है। चरण बहुत सुंदर चरण विग्रह है, बड़ा बड़ा विग्रह है, और ऐसे भगवान चल करके आए वृंदावन से, मूर्ति चल करके आई थी दुराही देने के लिए। ये कथा नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रेमा वेश नृत्य गीत कैलक का प्रसारण आविष्ट है या कैलक गोपाल श्रवण। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ नृत्य गीत गान नृत्य कीर्तन सब हो रहा था और सब परम आनंद में थे। फिर गोपाल की स्तुति किए, सही रात्रि तहा रही भक्त पर संगे गोपाल एला पूर्व कथा सुने बहुरंगे। तो उस रात गोपाल जी के ही पास रुके मंदिर में, वहाँ तो वहाँ रह करके गोपाल कैसे वृंदावन से आए साक्षी देने के लिए इस कथा को सुन रहे। नित्यानंद गोसाई करे, नित्यानंद गोसाई जब तीर्थ भ्रमिला साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आएगा। जब नित्यानंद प्रभु तीर्थों में घूम रहे थे बहुत पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पहले, तो वे साक्षी गोपाल को देखने के लिए कटक आए थे। नित्यानंद प्रभु बहुत पहले आए थे उसको देखे थे, अतः सब बात वही जानते थे। साक्षी गोपाल कथा सुनी लोक मुख है, सही कथा कहें प्रभु सुने महास। नित्यानंद प्रभु उस कथा को सुने थे इसलिए वही सब कथा सुनाने लगे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रोता बने, बड़े प्रेम से सुनने लगे सब भक्तों के साथ। गोपीनाथ जी की कथा के समय चैतन्य महाप्रभु वक्ता थे, नित्यानंद प्रभु श्रोता थे और सब भक्त लोग, और साक्षी गोपाल जी की कथा से नित्यानंद प्रभु कहने लगे और सब सुन रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे। कथा रियली जो कह रहे हैं अब यहाँ से चालू होती है, तो इस कथा को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।